यहाँ तक बात क्या हो गई कि एक औरत दूसरा निकाह कर सकती है। अब आप मुझे बताइए, ये हुक्म जो अभी आपने सुना है, ये वो बात है जो कल के सबक में आपको तल्लाक हसना की सूरत में बताई गई थी। कितने लोगों को पता है ये हुक्म कि एक या दो तल्लाकों के बाद जब इद्दत पूरी हो जाए, औरत अपने घर आ गई, मर्द चला गया अपने घर, तो उसके बाद दोबारा निकाह हो सकता है? कितनों को हमारे कल्चर में पता है? कितने घराने टूटे हुए फिर जुड़ सकते हैं? वो सारा मर जाता है एक दो साल के बाद, फिर बंदा कहता है चलो वही अच्छा था या वही अच्छी थी। जरूरी तो नहीं कि जहां सोचा हो वहां हो, नहीं हुआ तो रास्ता तो खुला था, लेकिन लोगों को जो नहीं पता तो वो एक लाइल्मी की मौत मर रहे हैं। और मैं कहती हूँ ये मसाइल जुमे की खुतबों में, मर्दों के सेशंस में, वीकली सेशंस में ऐसे इश्यूज को आम करने की जरूरत है, क्योंकि ये माशरती मसला है। नमाजें तो अभी भी सारे नहीं पढ़ते, सच्ची जो बात है उम्मत मुस्लिमा में, शादी ब्याह तो सारे करते हैं ना, तो नमाज के मसाइल को तो अहम है ही ये करना, लेकिन शादी के मसाइल तो 100% लोगों का मसला है। और ये अगर आप ना पढ़ रहे होते कुरान तरतीब के साथ, तो ये मौजू पे कभी दर्स करवाया किसी ने? और करवा भी लें तो लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा कि ये तलाक का इशू आपने क्या शुरू कर दिया। देखिए बहुत सिंपल बात है, मैं दोहरा देती हूँ, बेहतरीन तलाक क्या है कि मर्द एक दफा तलाक देकर चुप कर जाए और 3 महीने पूरे होने पे ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगी। यानी ये जो हमारे यहाँ है ना कि 3 तलाकों से तलाक होती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। 3 तलाकें तो 3 राइट्स थे मर्द के पास, उसने इकट्ठे यूज कर लिए, या 3, अब इस वक्त हम तरीके पे भी नहीं बात करें कि इकट्ठी दी है या 3 माह में दी, लेकिन मर्द बस एक दफा बीवी को तलाक दे दे और खामोश हो जाए और 3 माह गुजरने दे, उसी घर में रहे, जिधर भी रहती है, अगर चली भी जाती है, जो ही 3 माह पूरे हो जाएंगे तलाक हो जाएगी। लेकिन उस सूरत में दोबारा, ये इनकी वही तलाक थी ना, तभी तो दोबारा उस मर्द ने निकाह का पैगाम भेजा। बात वाज़ेह, क्या जरूरत है कि 3 दफा एक काम करके काम किया जाए? जब बात खत्म होती है एक से तो खत्म कर दीजिए, इसमें चॉइस मौजूद है। इद्दत के दौरान अगर मर्द उसको कहता है रजू करना मैंने, तो फिर बीवी का इख्तियार नहीं नो कहने का। यानी अगर मर्द कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, खबरदार चली जाओ मेरे घर से, गुस्से में बोल के चला गया, औरत जो है वो सामान पैक करने लग गई, ये हुआ मेरी बेइज्जती कर दी, दिस एंड दैट, बाहर गया, मर्द को जरा समझ आई ये क्या कह आया बोल आया, दिस एंड दैट, उसी दिन जब फौरन वापस आता है कहता है कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, रजू। अब औरत नहीं कह सकती नहीं जी मैं तो जा रही हूँ, मैंने तो टिकट बुक करा ली। अब औरत मजबूर है, जब तक इद्दत के बीच में मर्द कहेगा रजू, तो औरत नहीं कह सकती कि मैंने नहीं रहना अब, ठीक है? ये इद्दत के दौरान है, इद्दत गुजर गई, अब औरत को इख्तियार है। आप ये देखें ना, ये बहन घर चली गई थी ना, अब माकल ने रोकना भी चाहा लेकिन बहन के पास चॉइस है। अब जरूरी नहीं कि ये माने, यानी मैं सोचती हूँ कि एक लड़की एक औरत इतनी सिक्योर है इसमें, उधर भी हो सकती है जहां पहले रह रहे थे, कोई बात नहीं कर लेते हैं एक तलाक से, देखते हैं एक चांस ले लेते हैं, कोई बाहर से उससे अच्छा रिश्ता मिल गया तो उधर हो जाएगी, नहीं तो 1 साल बाद दोबारा इनसे निकाह कर लेंगे। अब ये तो खुले दिलों की बातें हैं ना, हमारे तो बीच में इतने, जिसको अपनी पंजाबी जबान में आप कहें कि पुआड़े पड़ जाते हैं, कि जो बातें नहीं होती वो गड़े मुर्दे खुला के लोगों ने अगली पिछली बातें की होती हैं। तो समझ आया आपको सवाल? हलाला कब होता है? जब 3 तलाकों के बाद मियाँ बीवी जुदा हो जाएं, 3 तलाकें हो गई, मियाँ अलग हो गया, बीवी अलग हो गई, इद्दत भी पूरी खत्म, 3 तलाकों में तो बात ही खत्म हो गई ना। अब उसके बाद दोबारा वो मर्द दोबारा उसे निकाह नहीं कर सकता जब तक कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे, अनप्लैंड उस औरत का कहीं और निकाह हो, शादी हो, वो रहे, या वो मर्द फौत हो जाए, बेवगी की इद्दत गुजार ले, या वो मर्द उसको अपने ओन पे तलाक दे दे, दोबारा भी ऐसे हालात हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फिर वो औरत फ्री होगी तो फिर पहले से कर सकती है, ठीक है? जितना मर्जी वो गुजर जाए। जी आप क्या समझे अभी तक कुरान के स्टाइल से, ठीक है? एक तोहर से दूसरा तोहर एक है। देखिए इस पे तो आपको इतने इख्तलाफात लोग देंगे कि हमारा तो पूरा मुआशरा जो है वो इस पे, ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल इशू बन चुका है हमारी सोसाइटी में। ख़ास तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया में फ़िक्ह हनफी का नाम लेकर लोग जो है अपने मसलों को पेश करते हैं, इसी तरह अरब ममालिक हैं वो फ़िक्ह शाफ़ी को मानते हैं, इमाम मालिक को मुल्क शाम के लोग मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं ईरान इराक की साइड पे, उधर हो सकता है कि इमाम अहमद को मानते हो। इतना ज़्यादा रीनोन, इतना ज़्यादा ये इशू है कि वो आपकी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपके और मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है कुरान की आयतें और हदीस? दिल मानता मान जाए, नहीं मानता तो नहीं माने। कम से कम मोहतात तरीके से ये बात तो आप मानते हैं ना कि एक मर्द ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, दोबारा भी कह दिया, तिबारा भी कह दिया, वो सोचते हैं कि एक तीन हो गई। अगर आप कुरान की इस तरतीब को देखते हैं, और इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला का फतवा है कि वो तीन एक ही गिनी जाती है, एक तो हर एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में 10 दफा भी कोई कहता है, वो कहते हैं ये एक ही गिनी जाती है क्योंकि अल्लाह ने तरीका दूसरा बताया। बात वैसे तो बाकी जिसको इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक फिक को फॉलो करते हैं नो प्रॉब्लम, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन मैं तो वैसे भी आपको इस वक्त फिक नहीं पढ़ा रही, कुरान की तफसीर है ना, तो इसके ऊपर बात आप अपने अमल के लिए समझ आती है और बात समझे, और अगर कोई नहीं मानता तो उसको जिद ना करें प्लीज। आप देखिए कि कुरान की आयतें ले रहे हैं ना, अभी किसी तफसीर को खोल के देख लें आपको आयतें यही मिलेंगी। इवन जो लोग नहीं मानते, मैं किसी की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला वो इल्म का एक सतून है, लेकिन फिकह हनफी के इमाम थे जिनका फतवा उनसे फर्क है, जो कहते हैं कि एक मौके पर 3 दफा कह दिया तो 3 दफा हो गई तलाक, वो कहते हैं कि इमाम इब्ने तैमिया इतने बड़े इमाम है ये इल्म के, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में मैं उनको नहीं मान सकता क्योंकि हम हमारे मसलक के ऑपोजिट है। तो ये बातें मेरे और आपके लेवल से बड़ी हैं, हम इस लेवल पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है? जिसको जो दिल चाहे इसके ऊपर आगे मजीद आप रिसर्च करना चाहें तो कर ले। जी
भी जैसे मैंने आपसे पूछा था वो कोर्ट मैरिज, लेकिन मैं कल से थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि जैसे कि वली नहीं है तो शादी नहीं है, तो जो बच्चे मेरे सामने दो चार ऐसी शादियां हुई तो उन्होंने मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा लिया, तो उसमें तो वली भी नहीं था, तो फिर वो क्या मस्जिद वाले और
देखिए कि जब ख्वाहिशात परवान चढ़ती है ना तो मसले बदल जाते हैं। एक हदीस है कि जब लड़की और वली के बीच में झगड़ा हो जाए तो फिर जो मुसलमान हुक्मरान है ना, जैसे या हजरत उमर थे, हजरत अबू बकर थे, वो उसका वली बन जाएगा। ये हदीस है, बिल्कुल सच। और वो झगड़ा किस नौइयत का? एक लड़की मुसलमान हुई, बाप नॉन मुस्लिम है। अब क्या वो माँ कहेगी कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी करनी है तो वो काफिर बाप मानेगा? अभी सूरत में क्या है कि आप अपने दौर का जो भी उस वक्त का इमाम खलीफा है उसको बीच में डाल के बात बना लेंगे। ये इस्तिथनाई सूरतें आज भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ना तो भी इस्लाम है ना कोई दूसरी बात है। आम बच्चियां अपने बाइज्जत बापों को पीछे करके मस्जिद के एक मौलवी साहब को वली बना लें, आप अपने ऊपर रख के सोचें आप मानते हैं? आपको ऐसे मौलवी साहब जहर लगेंगे कि हमारी बेटी भाग के भी गई और शादी करा दी। ये सिर्फ वहां है जहां कुफर से इस्लाम पे लोग आ रहे हैं या बेदीन। मेरे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं कि जैसे मिसाल है कि एक फैमिली ऐसी है कि बाप इस्माइली हैं, अब बच्चे बीवी बेटी सब माशाल्लाह इस्लाम पे आ चुके हैं, अब जब उसकी शादी का मौका, वो कहता है मैंने इसके अपने खानदान के लड़के से करनी है। अब वो इस्माइली है या शिया है या वट्स है वो या वहाबी है, कोई भी नाम आप सोचें, यानी इस वक्त इन नामों में ना बढ़े। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब ऐसा मसला है कि लड़की कुरान सुन्नत पढ़ गई है, हमारे पास ऐसी माशाल्लाह मैं कहूँगी सैकड़ों मिसालें मौजूद होती हैं बच्चियों की, जब वो कुरान पढ़ती हैं तो उनको समझ आती है कि हमें कुरान सुन्नत वाला लड़का चाहिए। बाप जो होते हैं वो पिछले ट्रेडिशनल अपने गाँव के किसी लड़के से करते हैं, जो हो सकता है कि बिदात भी हो और उसमें हो, अब झगड़े पड़ते हैं। ऐसा वक्त जहाँ कोई दीन का झगड़ा आ जाता है तो फिर किसी ऐसे बंदे को बीच में आना है कि जो देखे कि मौकफ किसका सच है, वो तो बात समझ आती है, लेकिन आम घरों की सिर्फ आई लव यू और आई लव हिम और दिस एंड दैट पे बापों की इज्जत रुसवा करना, ये तो भाई इज्जत बच्चियों का काम नहीं है ना।